एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी कहानी उतर रहे हैं जो निराशा से शुरू होती है और फिर उम्मीद और हाँ जीत तक पहुंचती है।
बिल्कुल, ये कहानी है सिस्टिक फाइब्रोसिस मतलब CF नाम की एक बहुत ही मुश्किल जानलेवा बीमारी से लड़ने की।
हाँ, और हम बात कर रहे हैं बिजल पी त्रिवेदी की किताब ब्रेथ फ्रॉम सॉल्ट कॉन्करिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में।
ये सिर्फ एक बीमारी पर जीत की कहानी नहीं है, है ना? ये दिखाती है कि कैसे मतलब विज्ञान, जुनून से भरे लोग और कुछ बिल्कुल नए आइडियाज मिलकर कमाल कर सकते हैं।
सही कहा, नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। और ये आज भी उतनी जरूरी है क्योंकि ये दूसरी मुश्किल बीमारियों से लड़ने का एक तरह से रास्ता दिखाती है।
ये सिर्फ दमा बनाने की कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरे समुदाय की अपने बच्चों के लिए लड़ने की और अपनी किस्मत खुद लिखने की कहानी है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं।
ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लेखिका से, बिजल पी त्रिवेदी। क्या बात उन्हें खास बनाती है इस कहानी को बताने के लिए?
देखिए, बिजल त्रिवेदी एक जानी मानी अवार्ड विनिंग साइंस जर्नलिस्ट हैं। उनका काम आपने नेशनल ज्योग्राफिक, साइंटिफिक अमेरिकन जैसी बड़ी जगहों पर देखा होगा।
अच्छा।
और उनके पास साइंस जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री है, तो वो मुश्किल साइंटिफिक बातें समझ सकती हैं और हम सबको आसान भाषा में समझा भी सकती हैं।
तो वो एक तरह से पुल का काम करती हैं विज्ञान की दुनिया और हमारे बीच।
हाँ, और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, उन्हें मेडिकल रिसर्च, जेनेटिक्स, दवा कंपनियों के इनोवेशंस, इन सबको कवर करने का करीब 2 दशकों का अनुभव है।
अच्छा, खासा अनुभव है।
बिल्कुल, और इस किताब के लिए उन्होंने सालों तक मतलब मरीजों से, उनके परिवारों से, डॉक्टरों, साइंटिस्टों और जो सिस्टिक फाइब्रोसिस फाउंडेशन है CFF और दवा कंपनी वर्टेक्स, उनके लोगों से बहुत गहराई से बातचीत की है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बता रही।
नहीं, वो कहानी के पीछे के इंसानी जज्बात, वो संघर्ष, वो उम्मीदें, उन सबको महसूस कराती हैं।
और एक अच्छी जर्नलिस्ट की तरह वो मुश्किल सवाल भी उठाती हैं, जैसे दवाओं की कीमत वगैरह।
हाँ बिल्कुल, वो उन नैतिक सवालों से कतराती नहीं है जो इस सफलता के साथ जुड़े हुए हैं। यही चीज मतलब विज्ञान को इंसानियत से जोड़ना और एक बैलेंस नजरिया रखना उन्हें इस कहानी के लिए परफेक्ट बनाता है।
समझ गई। तो अब आते हैं किताब पर। ब्रेथ फ्रॉम सॉल्ट असल में है किस बारे में, इसका निचोड़ क्या है?
ये किताब, जैसा हमने कहा, सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी CF के एक अविश्वसनीय बदलाव की कहानी है। आप सोचिए, कुछ दशक पहले तक ये बीमारी बच्चों के लिए एक तरह से मौत की सजा जैसी थी, और आज उसी बीमारी के साथ लोग 40, 50, 60 साल जी रहे हैं, और वो भी एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ।
ये तो सच में कमाल है। तो किताब ये बताती है कि ये सब हुआ कैसे, क्या था वो जादू?
हाँ, किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि ये कोई एक चीज का नतीजा नहीं है, ये दशकों तक चले लगातार साइंटिफिक रिसर्च का फल है। मरीजों और उनके परिवारों की जबरदस्त लॉबिंग, जिसे पेशेंट एडवोकेसी कहते हैं, उसका नतीजा है, और सबसे खास सिस्टिक फाइब्रोसिस फाउंडेशन मतलब CFF का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी मॉडल।
हाँ, आपने जिक्र किया था वेंचर फिलैंथ्रोपी, ये क्या चीज है, थोड़ा और बताएंगे?
हाँ, वेंचर फिलैंथ्रोपी यही वो गेम चेंजर था। आसान भाषा में समझे तो एक नॉन प्रॉफिट संस्था जैसे CFF जो दान पर चलती है,
हाँ,
वो पैसा सिर्फ बांटती नहीं है बल्कि उसे सीधे दवा बनाने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई वेंचर कैपिटलिस्ट या बिजनेस इन्वेस्टर करता है।
अच्छा, मतलब वो रिस्क ले रहे थे।
बिल्कुल, CFF ने ये बड़ा जोखिम उठाया ताकि उन दवाओं पर रिसर्च हो सके जिन्हें शायद बड़ी फार्मा कंपनियां नजरअंदाज कर देती, क्योंकि मरीज कम थे, मुनाफा शायद उतना नहीं दिखता था।
ये तो वाकई बहुत हिम्मत की बात है एक चैरिटी के लिए।
हाँ, और यही इस कहानी का सबसे अनोखा पहलू है। ये सिर्फ साइंस की जीत नहीं, ये एक नॉन प्रॉफिट की हिम्मत, उसकी दूरदर्शिता और उसकी नई सोच की भी जीत है।
तो किताब दिखाती है कि कैसे ये सब चीजें, विज्ञान, लोगों का जुनून और ये नया फंडिंग मॉडल मिलकर एक लाइलाज बीमारी की कहानी बदल सकते हैं।
एग्जैक्टली, ये किताब हमें 1930 के दशक के अंधेरे से लेकर 21वीं सदी के चमत्कारी दवाओं तक के पूरे सफर पर ले जाती है।
चलिए, तो इस सफर के कुछ अहम पड़ावों को देखते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है, एकदम शुरू में क्या था?
शुरुआत तो काफी निराशाजनक थी, 1930-40 का दशक। CF एक पहेली थी, वो पुरानी कहानियां थी ना यूरोप की कि जिन बच्चों को किस करने पर वो नमकीन लगे।
हाँ, वो ज्यादा नहीं जीते।
बिल्कुल, फिर डॉक्टर डोरथी एंडरसन जैसी कुछ शुरुआती डॉक्टरों ने बच्चों की ऑटोप्सी से पैटर्न पहचाना, पैंक्रियाज में सिस्ट और फाइब्रोसिस, फेफड़ों में गाढ़ा बलगम, उन्होंने इसे नाम दिया, पर न कोई कारण पता था न इलाज। बच्चे कुछ साल भी मुश्किल से जी पाते थे।
ये तो बहुत ही मुश्किल दौर रहा होगा परिवारों के लिए।
तो पहली उम्मीद कहाँ से आई?
पहली उम्मीद बनकर आए खुद मरीजों के पेरेंट्स। 1955 में कुछ पेरेंट्स जो अपने बच्चों की तकलीफ से दुखी थे, अकेले थे, उन्होंने मिलकर बनाया सिस्टिक फाइब्रोसिस फाउंडेशन, CFF।
अच्छा, पेरेंट्स ने खुद पहल की?
हाँ, ये छोटा सा कदम था पर ऐतिहासिक। उन्होंने सबसे पहले देखभाल मतलब केयर पर फोकस किया, क्लिनिक नेटवर्क बनाए, इलाज के तरीके बेहतर किए, जैसे वो छाती पर थपथपाने वाली फिजियोथेरेपी, पाचन के लिए एंजाइम देना।
इसी दौरान वो स्वेट टेस्ट यानी पसीने की जांच वाला तरीका आया जिससे बीमारी का पता लगाना आसान हुआ और नमकीन पसीने वाली बात कन्फर्म हो गई। इन सब शुरुआती कदमों से बच्चों की उम्र थोड़ी बढ़ने लगी थी।
तो समुदाय ने जिम्मेदारी उठाई, लेकिन बीमारी की जड़ तक पहुंचना वो तो अभी बाकी था।
हाँ, असली साइंटिफिक ब्रेक थ्रू आया 80s के दशक के आखिर में। जेनेटिक्स की नई टेक्नोलॉजी आ रही थी और दुनिया भर के साइंटिस्ट उस एक जीन को खोजने में जुट गए जो CF के लिए जिम्मेदार था।
एक रेस चल रही थी जैसे।
बिल्कुल, एक जबरदस्त रेस थी। फ्रांसिस कॉलिंस, लैपचीत सुई जैसे बड़े नाम इसमें शामिल थे, और फिर 1989 में वो जीन मिल गया, CFTR जीन।
ये तो बहुत बड़ी न्यूज रही होगी उस वक्त।
ओ, बहुत बड़ी। इससे पहली बार पता चला कि आखिर गड़बड़ कहां है। ये जीन एक प्रोटीन बनाता है, CFTR प्रोटीन, जो हमारी कोशिकाओं की सतह पर नमक और पानी के आने जाने का रास्ता, एक चैनल या गेट की तरह कंट्रोल करता है।
अच्छा।
CF में ये गेट खराब होता है, ठीक से खुलता बंद नहीं होता। इससे शरीर में वो गाढ़ा चिपचिपा बलगम बनने लगता है जो फेफड़ों, पाचन तंत्र सब जगह जम जाता है और दिक्कतें पैदा करता है।
तो जीन मिल गया, प्रॉब्लम समझ आ गई, लगा होगा कि बस अब इलाज बन ही जाएगा।
हाँ, उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी, लेकिन असल चुनौती तो अब शुरू हुई थी, इस जानकारी को एक कारगर दवा में कैसे बदला जाए।
और यहीं पर वो वेंचर फिलैंथ्रोपी वाला आइडिया आया।
एग्जैक्टली, यहीं पर CFKF के जो लीडर थे डॉक्टर रॉबर्ट बील, उन्होंने वो क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने महसूस किया कि बड़ी दवा कंपनियां शायद CF जैसी दुर्लभ बीमारी पर बड़ा दाव न लगाएं, मरीज कम तो शायद मुनाफा कम।
ये तो होता है अक्सर।
तो CFKF ने फैसला किया, हम इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद पैसा लगाएंगे। उन्होंने डोनर से मिले करोड़ों डॉलर सीधे वॉटेक्स जैसी बायोटेक कंपनियों में इन्वेस्ट किए ताकि वो CFTR प्रोटीन को ठीक करने वाली दवा खोजने पर काम करें। CFKF ने इसे कहा बाइंग शॉट्स ऑन गोल, मतलब हम इलाज पर दाव लगा रहे हैं।
ये तो कमाल का रिस्क था एक चैरिटी के लिए, और क्या ये काम आया?
हाँ, ये जोखिम रंग लाया। वर्टेक्स के साथ CFF की पार्टनरशिप से पहली बड़ी सफलता मिली कैल्डेको नाम की दवा के रूप में।
कैल्डेको?
हाँ, ये प्रिसिजन मेडिसिन का एक शानदार उदाहरण थी। ये दवा उन कुछ मरीजों पर, करीब 4% मरीजों पर जिनमें एक खास तरह की जेनेटिक गड़बड़ी थी, G551D म्यूटेशन, जादू की तरह काम करती थी।
सच में?
हाँ, किताब में उन मरीजों के अनुभव हैं। सालों बाद पहली बार खुलकर सांस लेना, वो पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत इमोशनल मोमेंट था वो CF कम्युनिटी के लिए।
लेकिन ये तो सिर्फ 4% लोगों के लिए थी, बाकी 96% का क्या हुआ?
सही सवाल। अगला कदम था ज्यादा लोगों तक पहुंचना। फिर आई और काम भी। ये दो दवाओं का मिक्सचर थी और सबसे कॉमन वाली जेनेटिक गड़बड़ी F508 डेल वाले लगभग आधे मरीजों के लिए थी।
अच्छा, तो ये ज्यादा लोगों के लिए थी।
हाँ, ये भी एक जरूरी कदम था, पर इसका असर कैल्डेको जितना जबरदस्त नहीं था, थोड़े कम असरदार, थोड़े साइड इफेक्ट्स भी। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई ट्राइकाफ्टा।
ट्राइकाफ्टा, ये नाम तो काफी सुना है हाल में।
हाँ, ट्राइकाफ्टा तीन दवाओं का कॉम्बिनेशन थी, और ये दवा वाकई चमत्कारी साबित हुई। क्लिनिकल ट्रायल्स में इसने लगभग 90% CF मरीजों में फेफड़ों की फंक्शनिंग में बहुत बड़ा और टिकाऊ इम्प्रूवमेंट दिखाया।
90%?
हाँ, इसने सचमुच CF को कई लोगों के लिए एक जानलेवा बीमारी से एक मैनेज की जा सकने वाली क्रोनिक कंडीशन में बदल दिया। ये दशकों की मेहनत, पेरेंट्स का संघर्ष, साइंटिस्ट की लगन और CFF की उस बोल्ड स्ट्रैटेजी का नतीजा था, एक सच्ची जीत।
ये सुनकर तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, पर जैसा आपने कहा, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस सफलता के साथ कुछ मुश्किलें, कुछ सवाल भी आए।
हाँ, और किताब इस पहलू पर भी ईमानदारी से बात करती है। ट्राइकाफ्टा जैसी चमत्कारी दवा की कीमत अमेरिका में $3,00,000 प्रति वर्ष से भी ज्यादा रखी गई।
$3,00,000, मतलब करीब 2.5 करोड़ रुपए साल का एक मरीज के लिए।
हाँ।
और इससे वो मुश्किल सवाल खड़ा हुआ क्या वो दवा जिसके बनने में नॉन प्रॉफिट चैरिटी का पैसा लगा हो वो इतनी महंगी होनी चाहिए?
ये तो बहुत बड़ा नैतिक सवाल है, एक्सेस का सवाल है।
बिल्कुल, किताब में दवा कंपनी वर्टेक्स के तर्क भी दिए गए हैं, रिसर्च का भारी खर्च, फेलियर का रिस्क, दवा की वैल्यू वगैरह। और CFF के उस फैसले पर भी चर्चा है जहां उन्होंने भविष्य की रॉयल्टी के अधिकार वर्टेक्स को $3.3 बिलियन में बेच दिए। इससे CFF फाइनेंशियली तो बहुत मजबूत हो गया, पर कीमत पर उनका कंट्रोल या असर कम हो गया।
अच्छा, ये भी एक पहलू है।
और सबसे जरूरी बात, किताब उन 10% मरीजों को नहीं भूलती जिनके लिए दवाएं अभी भी काम नहीं करती, तो लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तो ये कहानी विज्ञान की जीत तो है ही, साथ में हमें हेल्थ केयर के मुश्किल सवालों पर सोचने को भी मजबूर करती है। इस पूरी चर्चा से क्या मुख्य संदेश या थीम्स हम निकाल सकते हैं?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और बुनियादी संदेश है बीमारी को मॉलिक्यूलर लेवल पर समझने की ताकत, है ना? जब साइंटिस्ट ने यह समझ लिया कि CFTR प्रोटीन में असल में प्रॉब्लम क्या है, तभी वो उसे ठीक करने वाली दवा डिजाइन कर पाए। मतलब डीप रिसर्च कितनी जरूरी है।
सही बात है, सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं, जड़ पर काम करना।
दूसरा जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा वो है मरीजों और उनके समुदाय की ताकत। CFF की कहानी दिखाती है कि कैसे आम लोग, यहाँ पेरेंट्स, सिर्फ इंतजार करने के बजाय खुद बदलाव के एजेंट बन सकते हैं।
हाँ, उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं जुटाया,
नहीं, उन्होंने रिसर्च की दिशा तय की और दवा बनाने में पार्टनर बने। ये भारत में जो हेल्थ ग्रुप्स काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।
बिल्कुल। और तीसरा?
तीसरा वो वेंचर फिलैंथ्रोपी का क्रांतिकारी मॉडल। ये शायद सबसे यूनिक सीख है, एक नॉन प्रॉफिट संस्था का दवा बनाने में सीधा पैसा लगाना, रिस्क लेना, ये दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाता है। ये प्रूफ करता है कि चैरिटी भी बड़े स्केल पर इनोवेशन ड्राइव कर सकती है।
ये तो है। और एक बात जो मुझे जरूरी लगी वो ये कि साइंटिफिक प्रोग्रेस एक लंबा और धीमा सफर है। हमें लगता है खोजें रातों रात होती हैं, पर ये किताब याद दिलाती है कि दशकों की मेहनत लगती है, हजारों नाकामियां होती हैं और लगातार सीखते रहना पड़ता है। 1989 में जीन खोजना अंत नहीं था, वो एक और मुश्किल रेस की शुरुआत थी।
हाँ बिल्कुल। और पांचवा, जिसकी हमने अभी बात की, आधुनिक दवाओं से जुड़े नैतिक सवाल, खासतौर पर कीमत और पहुंच। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इनोवेशन का फायदा सब तक कैसे पहुंचे, सिर्फ उन तक नहीं जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं।
ये भारत के लिए तो बहुत ही बड़ा सवाल है।
बहुत बड़ा।
क्या किताब में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ कोट्स या विचार जो खासतौर पर दिमाग में रह जाते हैं?
हाँ, कुछ विचार हैं जो पूरी कहानी का सार पकड़ते हैं। जैसे एक भाव ये है कि मरीजों के पसीने का नमक और उनकी सांसों का संघर्ष, यही वो सुराग थे जिनसे ये बड़ी पहेली सुलझी। ये दिखाता है कि मरीजों के अनुभव कितने कीमती होते हैं रिसर्च के लिए।
और एक विचार जो मुझे बहुत पसंद आया वो था कि CF के इतिहास में पहली बार हम सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं कर रहे थे, हम उस असल खराबी को ठीक कर रहे थे जो बीमारी का कारण बनती है। ये टारगेटेड थेरेपी की ताकत है।
बिल्कुल। और CFF के बारे में ये बात कि CF कम्युनिटी ने सिर्फ बेहतर इलाज चाहा नहीं, उन्होंने उसकी मांग की, उसके लिए पैसा दिया और उसे डिजाइन करने में मदद की, ये दिखाता है कि वो सिर्फ रिसीवर नहीं थे, वो को क्रिएटर बने समाधान के।
हाँ, ये बहुत पावरफुल है। डॉक्टर बील और CFF की सोच के बारे में भी एक लाइन थी कि वो सिर्फ डिफेंसिव होकर केयर इम्प्रूव नहीं करना चाहते थे, उन्हें अटैक करना था और एक इलाज खरीदना था। ये उनकी प्रोएक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी दिखाता है।
हाँ, ये सारे विचार मिलकर दिखाते हैं कि कैसे साइंस, कम्युनिटी, स्ट्रेटजी और हिम्मत ने मिलकर यह असाधारण काम किया।
तो इन सब बातों से अलग अलग फील्ड के लोग क्या सीख सकते हैं, मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं इसके?
साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के लिए तो ये बेसिक साइंस की गहराई में जाने और अलग अलग ग्रुप्स, इंडस्ट्री, अकेडेमिया, पेशेंट ग्रुप्स के बीच सहयोग कम महत्व दिखाता है।
और दवा इंडस्ट्री?
उनके लिए ये दुर्लभ बीमारियों में भी नए बिजनेस मॉडल बनाने का और नॉन प्रॉफिट्स के साथ पार्टनरशिप करने का एक जबरदस्त केस स्टडी है। वेंचर फिलैंथ्रोपी दिखाता है कि नॉन प्रॉफिट्स भी अहम निवेशक हो सकते हैं।
और पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप्स, खासकर भारत में जो समूह काम कर रहे हैं,
उनके लिए तो CFF एक रोल मॉडल है। कैसे वो सिर्फ जागरूकता फैलाने से आगे बढ़कर रिसर्च एजेंडा सेट कर सकते हैं, फंडिंग में मदद कर सकते हैं और दवा बनाने की प्रक्रिया में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं, डेटा और संगठन की ताकत का इस्तेमाल करके।
और सरकारें, पॉलिसी मेकर्स,
उनके लिए ये कहानी दिखाती है कि दुर्लभ बीमारियों पर रिसर्च को बढ़ावा देने वाली नीतियां जैसे अमेरिका का ऑर्फन ड्रग एक्ट था, कितना बड़ा फर्क ला सकती हैं। लेकिन साथ ही ये सरकारों को दवा की कीमतों को रेगुलेट करने और सब तक पहुंच सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी भी याद दिलाती है।
वो संतुलन साधना बहुत जरूरी है।
हाँ, इनोवेशन और अफोर्डेबिलिटी के बीच, और हम जैसे आम पाठकों और परिवारों के लिए ये उम्मीद, हिम्मत और मिलकर काम करने की ताकत की एक गहरी कहानी है। ये दिखाती है कि जब लोग एक मकसद के लिए साथ आते हैं तो वो पहाड़ भी हिला सकते हैं।
बिल्कुल। तो इस पूरी ज्ञान गोष्ठी के आखिर में आपके लिए सबसे यादगार या शायद सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ी बात शायद ये एहसास है कि जेनेटिक बीमारियां, जिन्हें हम अक्सर किस्मत का लिखा मान लेते हैं, वो शायद उतनी अटल नहीं है। वो जटिल पहेलियां हैं जिन्हें विज्ञान, सहयोग और नई बोल्ड सोच से सुलझाया जा सकता है। और वो वेंचर फिलैंथ्रोफी का मॉडल कमाल का है, कैसे एक नॉन प्रॉफिट ने पूरी इंडस्ट्री को रास्ता दिखाया। ये परोपकार की परिभाषा ही बदल देता है।
और मेरे लिए ये इंसान के जज्बे की जीत है, वो पेरेंट्स का जुनून जिन्होंने हार नहीं मानी, उन साइंटिस्ट का दशकों का धैर्य और उन मरीजों की हिम्मत जिन्होंने एक ऐसे भविष्य की उम्मीद रखी जो कभी नामुमकिन लगता था। ये कहानी दिखाती है कि उम्मीद जब साइंस और स्ट्रैटेजी के साथ मिलती है तो वाकई चमत्कार कर सकती है। ये सिर्फ दवा की कहानी नहीं, ये इच्छा शक्ति की कहानी है।
बिल्कुल सही कहा, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या ये CF मॉडल दूसरी बड़ी हेल्थ चुनौतियों के लिए भी काम कर सकता है? क्या इसे दोहराया जा सकता है? और सबसे जरूरी, क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसे जीवन रक्षक इनोवेशंस उन सभी तक पहुंचें जिन्हें उनकी जरूरत है, उनकी आर्थिक स्थिति देखे बिना?
ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ते हैं। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।